प्रणाम है मेरी माता और सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। चर्चा तो शरणागति की चल रही है, समर्पण की चल रही है, अर्थात अपने आप को परमात्मा को सौंपने की चल रही है, अपने आप को परमात्मा को चढ़ा देने की चल रही है। अपने आप को सौंप देना, अपने आप को चढ़ा देना अर्थात परमात्मा से सम्मिलन हो जाना। इस चर्चा को जारी रखने से पहले साधकों, दो शब्द आप जी की सेवा में। मुख्य बाधा भी है जो हमें भक्ति में आगे चलने नहीं देती। एक गुरुकुल में शिष्य लोग बैठे हैं, चर्चा चल रही है, आचार्य अभी पहुंचे नहीं कक्षा में, आपस में सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं। इस संसार में, इस देह में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अंग, ताकत वाला अंग, शक्तिशाली अंग क्या है, चर्चा चल रही है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, आपस में वाद विवाद हो रहा है, लेकिन कोई निष्कर्ष, कोई फैसला नहीं हो रहा। उतनी ही देर में गुरु महाराज पधारते हैं, चर्चा को सुनते हैं, चर्चा सुनते ही एक बनावटी सा क्रोध लाके तो इन सभी के सभी शिष्यों को बहुत डांटते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो गई हुई है आप लोगों की, मूर्ख हो आप, क्या ये कोई चर्चा का विषय है? खूब डांट टपट लगाई, भीतर से शांत थे, बाहर से भी शांत हो गए थोड़ी देर के बाद, लेकिन शिष्य तिल मिला गए। इतना सा अपमान गुरु महाराज द्वारा वो सहन न कर सके, आंखें टेढ़ी हो गई, लाल हो गई, कैसा गुरु है? ऐसा हम कुछ गलत कुछ कर नहीं रहे थे, आपस में खुसर फुसर होने लग गए। गुरु महाराज सब देख रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब थोड़ा वातावरण ठीक हुआ तो वे शांति थे, आप बहुत अच्छे हो, शिष्यों को कहा शाबाश। थोड़ा सा भी अवकाश आपको मिलता है तो आप ज्ञान पर चर्चा करनी शुरू कर देते हो, मुझे गर्व है आप पर, चेहरे खिल। शिष्य बहुत प्रसन्न, अभी डांट रहे थे अभी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। दोनों अंतरिक्ष अपने शिष्यों को दिखा के कहते हैं यही है सबसे शक्तिशाली वस्तु, ये जिभा है, ये वाणी है, दो आयाम है देवी सज्जनों। इस जीवा को मिले हुए एक तो ये स्वाद लेती है, दूसरी ये वचन बोलती है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट। इनको जो मर्यादित रखना सीख गया, समझ लीजिएगा उसकी साधना बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसका साधना के साथ बहुत गहरा संबंध है। बचपन में कटु वचन मुख से निकले हुए बूढ़े होने तक भी जिसके प्रति आपने बोले हुए हैं वे उसे भुला नहीं पाता। कटु वचन, कठोर वचन, अभिमानी शब्द, ईर्ष्यालु, अंदर निराशा है, जलन है, उससे मिश्रित शब्द, उससे प्रेरित शब्द, कुटिलता है, उससे प्रेरित शब्द। स्वामी जी महाराज ने कितना सत्य लिखा है, घाव तीर तलवार के पुराते हैं तत्काल। कैसी मार्मिक स्वामी जी महाराज ने बात लिखी है। तीर तलवार से जो घाव होते हैं वे तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं पुराते हैं तत्काल, थोड़ी देर के बाद भर जाते हैं, बहुत जल्द भर जाते हैं। वचनवान का घाव जो इस वाणी के वाण से जो वचन होता है, पीड़ा दित सबकाल, वह सदा पीड़ा देता रहता है। ये आज क्यों आपकी सेवा में अर्ष प्रसन्न किया जा रहा है, इसलिए प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभलिएगा। शब्द अपने मुख से, अपनी जीवा से बहुत सोच समझ के, बहुत सावधानी से बोला कीजिएगा। बहुत बड़ा पाप है जो हम शहर से ही कर लेते हैं। आप देखोगे जिन शब्दों से आपने दूसरे के हिये को, हृदय को जलाया है, उसके हृदय में आपने एक ज्वाला का टीका लगा दिया सीधा, जैसे इंट्रावीनस इंजेक्शन लगता है, बिल्कुल ऐसे काम करता है ये वचन का इंजेक्शन, ये कटु वचन। अभिमानी शब्द, कड़वा शब्द, इतना पीड़ादायक ये शब्द आपने कहा, अगले का हृदय जला के रख दिया। आप सोचते हो प्रकृति आपकी इस क्रिया पर अनभिज्ञ है? बिल्कुल नहीं। परमात्मा तो बहुत बड़ा हुआ ना, वह इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। सबसे बड़ा है, क्षमावान है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे तो हम तो कहीं के ना रहे। वे तो बहुत उच्च गगन महल में बैठा है, वहां से हम छोटे इतने दिखाई देते हैं, तो ये छोटी छोटी बातें तो उसे बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती है, सुनाई ही नहीं देती। लेकिन प्रकृति के तो सब जगह कान फैले हुए हैं, उसकी आंखें तो सब जगह हैं, वेस्पियर नहीं करती, वेस्पियर नहीं करती, तो वह सिर्फ दंड देना ही जानती है, वह क्षमा करना नहीं जानती। आपने एक का हृदय जलाया है, आपका हृदय न जले ये प्रकृति का असूल नहीं है। अपने पुराने वक्त याद करो, जिस वक्त आपने कटु शब्द बोल के तो दूसरों के हृदयों को बींधा था, अब घर में अपनी ही संतान के कारण, उनकी असफलता के कारण आपको अपना हृदय उसी प्रकार से जल रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा जल। हो सकता है उसकी जलन तो खत्म हो गई हो जिसको आपने जलन दी थी, लेकिन आपके अंदर की जलन तो अभी भी चल रही है। क्यों? पुत्र घर बेकार बैठा हुआ है, नित्य निरंतर जलन दे रहा है। ये प्रकृति के खेल है। प्रकृति कोई ना कोई ऐसा साधन बना देती है जिससे आपके अंदर वैसे ही जलन उत्पन्न होती रहे, आप उसी जलन की पीड़ा को सहन करते रहो जो जलन की पीड़ा आपने कभी किसी को दी थी। प्रकृति का याद रखना देवियों सज्जनों, ये क्षमा करना नहीं जानती, सिर्फ दंड देना ही जानती है। जैसे जज होते हैं, दंड ही दे सकते हैं, क्षमा का अधिकार राष्ट्रपति के पास, क्षमा सिर्फ परमात्मा के पास। बच्चा सफल नहीं हो रहा, माता पिता, माँ पिता उसे देख के दुखी होते होंगे कि नहीं होते होंगे, उनके हृदय में जलन पैदा होती होगी कि नहीं होती होगी। काम रुके हुए हैं हमारे, क्यों नहीं हो रहे, सोच विचार करना चाहिए। जिसके प्रति ऐसा अपराध हुआ है, मन ही मन उससे अगर आपके अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है कि आप सीधे जाके उससे माफी मांग सको, तो मन ही मन उससे क्षमा मांगो, परमात्मा से क्षमा मांगो, तो जलन खत्म हो सकती है। प्रकृति प्रकृति तो अपना हिसाब किताब जारी रखेगी। अतएव साधक, आप सबसे परबद्ध प्रार्थना है, मेहरबानी करके ये पाप जो सहज से ही हमारे से होता रहता है, वी आर नॉट एट ऑल केयरफुल, हमारा स्वभाव इस प्रकार का बन चुका हुआ है, साधक होना इससे बहुत बच के रहने की आवश्यकता। न जाने आपने अपनी कटुवाणी से किस किस के हृदय को बींधा हुआ है, ऐसी पीड़ा, ऐसी जलन जो अभी तक भी भूली नहीं है, बिसरी नहीं है। उधर भूली बिसरी नहीं है तो फिर प्रकृति आपको भी भूलने बिसरने नहीं देगी, आपको भी उसी ढंग से जला के रखेगी और वह जलाती है। आप अपने अपने अंतःकरण को थोड़ा सा झांक के देखो तो आपको ये बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होगा, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद ऑल ऑफ अस। शरणागति, कन्या ध्यान हुआ, कन्या अपने घर चली गई, ऐसे ही कहती थी ना, ससुराल नहीं अपने घर चली गई है। बहुत सुंदर, यह है समर्पण, यह है शरणागति देवी। यह ससुराल शब्द ठीक नहीं, यह सास ससुर शब्द ठीक नहीं, अपने घर चली गई है, एक माँ बाप को छोड़कर दूसरे माँ बाप के पास चली गई है, बड़ी मौज है, इसी को शरणागति कहा जाता है। अब मांग में सिंदूर भरने लग गई है, मैं किसी की हो गई हूं, शरणागति का चिन्ह लगा लिया है, सारे संसार को पता है शी इज मैरिड, मानो किसकी हो गई हुई है। मांग में सिंदूर भर लिया, माथे पर बिंदी लग गई, किसी की हो गई हुई है। जब व्यक्ति परमात्मा का हो जाता है तो उसे शरणागति कहते हैं, उसे समर्पण कहा जाता है। ये उदाहरण आपकी सेवा में रखी जा रही थी, वहां जाते ही पहले मायके का नाम जो था बदल दिया जाता था, अब नहीं, सरनेम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है, जो वहां के रीति रिवाज हैं वह अपना लेती है, घर उसका हो गया, बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, स्कूल में जाने लग जाते हैं। आजकल के स्कूल देखिए, बच्चे कम, माता पिता को ज्यादा स्कूल जाना पड़ता है, मानो उनका भी स्कूल साथ ही साथ चलता है। मम्मी उधर बुला रही है, मायके की मम्मी फोन कर रही है, पत्र लिख रही है, छुटकी का विवाह है, तेरे विवाह में छुटकी ने कितनी सहायता की थी, मेहरबानी करके एक महीना पहले आ जा, मेरे हाथ बटा। ये फोन करती है, मम्मी कैसी बात कर रही हो, बच्चों को स्कूल जाना होता है, इनके एग्जाम है, इनका ये है, इनका वो है, घर में इधर देवर का विवाह है, कैसे हो आप, मेहरबानी करके मुझे माफ करो, 20-25 साल वहां बिताए हैं उसने, एक घर बदल गया है। समर्पण, शरणागति, मैं नहीं आ सकूंगी, ज्यादा से ज्यादा विवाह से एक दो दिन पहले ही पहुंच पाऊंगी, बड़ी मुश्किल से, मेरी इंतजार न करना, मेहरबानी करके अपना प्रबंध आप स्वयं करो, थोड़ी और बड़ी होगी, ये घर कैसा है, सिर्फ देवी पांव रखने की जरूरत है, उस घर में आदमी पांव रखता है, इसे शरणागत होके जाता है, बस फिर वहीं का हो जाता है, ये शरणागति है। बच्चों का विवाह हो गया है, बहू आ गई है घर, अपने इस घर को छोड़कर दूसरे घर में चली गई हुई है, ये क्या कहती है, जब से तू मेरे घर में आई हुई है, कला साथ लेके आई है, ये घर अब मेरा हो गया है। शरणागति, पुत्र का विवाह हो गया है, अब सास बन गई है, मालकिन बन गई है। परमात्मा भी जिसको अपनाता है, जो परमात्मा का हो जाता है, उसका सब कुछ हो जाता है परमात्मा सहित। शरणागति है भक्तों, परमात्मा जिसको अपना लेता है, जो परमात्मा का हो जाता है, उसे परमेश्वर उसके कर्मों के अनुसार नहीं चलने देता। क्या पहचान है इस शरणागति की? परमेश्वर ने हमें अपना लिया है, अपना बना लिया है, क्या पहचान है इस बात की? देवियों स्पष्ट पहचान, तब वे हमें अपने कर्मों के अनुसार, बड़े गंदे कर्म, बड़े कटु कर्म, अपने कर्मों के अनुसार नहीं चलाता, तब उसे वह अपने अनुसार चलाने लग जाता है। ये पहचान है कि मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। महाभारत में साक्षियों बड़ी सुंदर सुंदर उदाहरणें हैं, जहां भगवान श्री अगर 18वीं अध्याय का 66वां श्लोक शुरू तो यहीं से हुआ था, पार्थ सब धर्मों का त्याग करके तो एक मेरी शरण में आ जा। यदि अर्जुन अपने धर्म का पालन करता रहता तो महाभारत का रंग रूप और होता। यदि द्रौपदी अपने धर्म का पालन करती रहती तो उसका रंग रूप बिल्कुल और होता। भगवान अपने अनुसार चलाता है शरणागत को। अगले रविवार को दिव्य सज्जन इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत।